प्रोग्राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज के द्वारा 7 मई 1993 प्रातः लगभग 8:30 वट वृक्ष के नीचे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जैसे बाजार का भाव एक स्थायी होता है और एक गतिविधि होती रहती है, ऐसे साधकों के हृदय में एक स्थायी भाव रहता है और एक घटपट रहती है। परमात्मा की तरफ मेरे को चलना है, मैं साधक हूं, यह स्थायी रहता है हर समय में। अनुकूल प्रतिकूल कैसी परिस्थिति तो मैं साधक हूं ऐसा भाव अचल रहता है। ये अहम न बदलने से साधक साधन करता है, ऊपर से भरता है और ऊपर से भरी हुई बात स्थायी नहीं होती, भीतर से पैदा हुई बात होती है वो स्थायी होती है। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य एक ध्येय अपना बन जाए तो फिर भीतर से साधन होने लगते हैं आप साफ। और जब साधन और असाधन दो चीज रहती है तब तक असली साधक नहीं है, क्योंकि साधन असाधन तो सब में रहते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं कि जिसमें साधन का अंश न हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसमें असाधन का अंश न हो। भले भलाई बुराई सब में रहती है, पापी से पापी कसाई से कसाई हो उसमें भी भलाई रहती है, और भले से भला हो साधारण आदमी उसमें भी बुराई रहती है। ये रहते हैं, ये गुण दोष में विश्व की निकलता गुण दोष सब रहते हैं। यही अगर साधक में रहे तो फिर साधक क्या हुआ, वो संसार ही हुआ। तो साधक में मुख्य सदगुण रहना चाहिए, असाधन नहीं रहना चाहिए। वो असाधन थोड़े होते जाते हैं, साधन बढ़ता जाता है, और साधन बढ़ते बढ़ते फिर साधन ही साधन रह जाते, असाधन बढ़ जाते हैं। और साधन ही साधन रहने से साध्य के साथ में संबंध हो जाता है, साध्य की प्राप्ति हो जाती है। तो साधन साधन क्या है कि जो परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति है जिससे संसार की रचना हुई है, इस जड़ प्रकृति की तरफ जितना आकर्षण है वही असाधन है। अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं, तो शुद्धि क्या है कि अब मेरे को भोग नहीं भोगना है, सुख और संग्रह नहीं करना है। ये दो बात आ जाए अपने में, मैं सुख का भोगी नहीं हूं, मैं तो योगी हूं, तो ऐसे सुख के भोग का त्याग कर देता है तब वो योगी हो जाता है। और जब तक भोगी होता तब तक योगी नहीं होता। तो योगी होना है, सत्संगी भाई बहनों को भोगी नहीं होना है, योगी होना है। फिर से जो समूत समर्पण योग उच्चते सिद्धि असिद्धि में जो अपनी क्षमता रहे उस क्षमता का नाम योग है। ये गीता का योग आज सुबह भी थोड़ी बात कही थी, ये योग है। हर एक परिस्थिति आती है, उन परिस्थिति में हम बह जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, तो हमारी गणना भोगियों में हो जाती है। और सुख दुख आने पर हम अपनी स्थिति पर रहते हैं तो हम योगी हो जाते हैं। पहले असर ज्यादा पड़ता है, फिर असर कम पड़ता है, फिर असर नहीं पड़ता है, ऐसी साधक की अवस्था होती है। सत्संग करने वाले भाई बहनों के विषय में मेरी एक धारणा है, जो कि वे हृदय से सत्संग करते हैं, ऐसे एक जो बाजारू सत्संग होती है, जैसे बाजार में गए सैल कर आए, ऐसे सत्संग योग सैल कर ली, गीता बहुत ठहर गए, आराम की जगह ठंडा जल है, पंखा लगा है, बिजली है, आराम करते बैठे, वो सत्संग ही नहीं है। तो वो संसार यह कुसंग ही है, बुरा न माने भाई, मानो कुछ संग है कुसंग, सत्संग है सत्संगी, तो भोग और आराम में लगे हैं वो सत्संग ही नहीं। सत्संगियों के भोग और आराम में जगह नहीं होती। तो ये बात मैं आप कह रहा हूं, सब जितने सत्संग करने वाले हैं सबके ऊपर ये लागू होती है, उनके अनुभव में बात आती है। राग द्वेष काम और क्रोध, राग द्वेष सूक्ष्म है और उसी का ही स्थूल अंश है काम और क्रोध रूप। तो स्थूल रूप काम और क्रोध है, ये आते हैं तो हृदय में हलचल मचा देते हैं। तो साधन करने से और सत्संग ठीक मन लगाकर करने से ये फर्क पड़ता है कि पहले जितना जल्दी जल्दी क्रोध आता था, जल्दी जल्दी कामना होती थी, उतना जल्दी नहीं होता, थोड़ी देर से आता है, कभी भी जल्दी भी आ जाए, परंतु ये फर्क पड़ता है। दूसरा फर्क पड़ता है कि काम क्रोध आदि बड़े भबका जोर से आता है, पीछे कम आता है, उतना जोर से नहीं आता। इससे अगर ही चलते हैं तो पहले ज्यादा देर ठहरता था, अब कम ठहरता है। ये तीन बातें हृदय से सत्संग करने वाले भाई बहनों में जरूर आएगा, उसमें मेरे विश्वास है। अगर नहीं आता है तो उनको अच्छा सत्संग नहीं मिला है। ऐसे व्याख्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय कथाएं होती जाती है तो वो हृदय से नहीं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं भीतर से, अपने उद्धार के लिए नहीं सुनते हैं, अपने कल्याण के लिए सुनने वालों में ये फर्क पड़ेगा। काम क्रोध भोग बेगम संयुक्त सुखी शक्नोती सोलम त्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भोम बेगम सयुक्त स सुखी नरक। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले बेग को जो सह लेते हैं, तो सहना क्या है, असली सहना तो ये है कि काम क्रोध उत्पन्न न हो, तो सह लिया पूरा, पर उत्पन्न होने पर भी सह लेते वो ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। मानो जल्दी जल्दी आता है, पीछे नहीं देर से आता है, फिर बबका ज्यादा आता था वो थोड़ा आता है, और ज्यादा ठहरता था थोड़ा ठहरता है, तीन फर्क उसे पड़ता है। यह जो भी फर्क पड़ता है तो ठीक होता है, और जितना ये आ जाए वो बुरा लगता है, खटकता है साधक के हृदय में, ये खटकता है। वो जितना अधिक खटकेगा उतना वो कम हो जाएगा। पारमार्थिक साधना में स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना है, इस वास्ते असाधन है निषिद्ध आसन को क्या है, एक मार्मिक बात है, जो साधन है उसकी कमी है वही साधन है, असाधन है। पारमार्थिक तत्व को जानना है तो जानना वो तो स्वतः स्वाभाविक है, उस जानने के चलते हुए जो उसमें कमी है तत्परता की, उस कमी का नाम असाधन है। मानो झूठ बोलता है तो सत्य की कमी है, वो तो झूठ न बोले, निषिद्ध आचरण है वो न करे, उनका त्याग कर ले, तो त्याग कर लेने बेहद आपसाप होते हैं। प्राय मनुष्यों की चाल है बेहद करना और निषिद्ध की तरफ ख्याल न करना, ये वर्ष लग जाते हैं, 20, 30, 40, 50 वर्ष, और वर्ष लगने पर भी सुधार जैसा ध्यान होना चाहिए वैसा नहीं होता है। उसमें कारण ये होता है कि सत्संग करते हैं वो सत्संग का विभाग तो अलग समझते हैं, और व्यवहार जो करते हैं उसका विभाग अलग समझते हैं। व्यापार आदि करने में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात वह करना ही पड़ता है, इसके बिना चलता ही नहीं। इस बार से वो कहावत है कि झूठ बिना धरा नहीं कूड़ बिना व्यापार नहीं, झूठ बिना कैसे होगा, ये तो करना ही पड़ता है अवश्य भाव ये ऐसा समझ लेते हैं। सत्संग का विभाग अलग है, अब सत्संग का विभाग ही वहां लगा ले तो कैसे व्यवहार होगा, तो वे साधक नहीं होते। साधक वे होते हैं जो निषिद्ध कर्मों का पहले त्याग करे। गीता प्रेस की पुरानी जितनी गीताएं हैं भाषा टीका, उनके अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति एक निबंध लगा रहता है। उस त्याग में सबसे पहले श्रेणी का त्याग निषिद्ध कर्मों का त्याग, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात अभाष्य भक्षण अभिशास निषिद्ध कामों का शरीर मन वाणी के द्वारा किसी तरह से न करना, ये पहले श्रेणी का त्याग। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग ये पहले होता है। खेत बोते हैं तो उसमें पहले जो कूड़ा करकट जो खेत के विरुद्ध पौधे हैं उनको काट कर खेत को साफ करना पहले होता है, फिर से उसमें खेती बोई जाती है। ऐसे साधकों के लिए यही बात है। तो साधकों के एक वृक्ष में बात और है, उसमें तो खेती के बीज डाले जाते हैं और इसमें तो बीज पहले से है, ममई वंश होती भगवान का अंश है, साक्षात मूर्तियां संभवन दिया जितनी मूर्तियां होती है हम बीज पड़ गए पिता मंगलि महदुर्म कस्मिन गर्भम धान्यम संभव सर्वभूतारम तथो होती भारत। तो ये बीज साक्षात परमात्मा का अंश है, ये पहले से है, केवल कूड़ा कट कर उठाने से इसको ये प्राकृत हो जाता है। तो बहुत काम करना बड़ा बढ़िया है, क्रियाओं में निषिद्ध कर्मों का त्याग है बहुत अच्छी चीज है। निषिद्ध कर्मों में कारण क्या होता है, अर्जुन ने पूछा, अथ केरव प्रियो तुम पापम चरित पुरुष, ये पाप कर्म क्यों करता है, अनिच्छन अपनी, क्यों पाप करना कोई चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दंड होता है, जो दंड है दुख है वो किसी को अच्छा लगता नहीं, वो अच्छा लगता नहीं तो उसका कारण पाप है, वो पाप क्यों करेगा। तो न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप कर बैठता है, केरव प्रियो किससे प्रेरित होता है, तो भगवान ने उत्तर दिया है काम ऐसा क्रोध है, सचिवें श्लोक में तीसरा अध्याय कामना है और क्रोध है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे मन की बात होनी चाहिए ये काम है। लोग भी धन की कामना है, मान की कामना है, बढ़ाई की कामना है, आराम की कामना है, यश की कामना है, स्त्री पुत्र परिवार की कामना, ऐसा कामना है, पर मूल बात इतनी है कि मेरे मन की बात होनी चाहिए, बस मेरे मन की बात होनी चाहिए यही कामना है। भगवान के मन की होनी चाहिए, दूसरा जनता के मन की होनी चाहिए, हमारे मन की ही गौण रखो। निषिद्ध कर्मों का हमें त्याग करना है, पीछे क्या कामना का त्याग है, वो निषिद्ध का त्याग करने पर, कामना का त्याग करने पर निषिद्ध का त्याग सोते हो जाता है स्वाभाविक ही, तो असाधन मिटने लगते हैं। तो बहुत काम वो करना जिसमें कार्य में ये दो भेद बताए मैंने, काम करते हैं क्रिया उसमें निषिद्ध क्रिया ना करें। विहित क्रिया है जैसे सत्य बोलना है ये विहित है और झूठ नहीं बोलना है ये निषिद्ध है। झूठ बोलना नहीं है ये बहुत बढ़िया चीज है, सत्य बोलना इसकी अपेक्षा भी। कोई भ्रम में न पड़े मैं ये नहीं सत्य बोलने का विरोधी हूँ, मैं ठीक नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। इसकी तात्विक बात कहना चाहता हूँ, इसकी मर्म की बात कहना चाहता हूँ। झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बोलेगा, अर्थ बोलेगा तो सास ही बोलेगा। अगर सास बोलने वाला है कहीं न कहीं चूक जाता है। दूसरी बात, सत्य बोलने का अभिमान होता है, झूठ न बोलने का अभिमान नहीं होता। मैं दूसरों का उपकार करता हूँ इसमें अभिमान आ सकता है, पर वे किसी को मैं दुख नहीं दूंगा इसमें अभिमान नहीं आता। मूलता से अभिमान तो सब जगह कर सकता है, इस जगह भी कर ले, परंतु स्वाभाविक मैं किसी को गाली नहीं देता, धक्का नहीं मारता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, तो कोई अपने में महत्ता का अनुभव नहीं करता। और मैं सेवा करता हूँ, सुख पहुंचाता हूँ, हित करता हूँ, तो मन लगता है मैं इतना उपकार करता हूँ, ऐसा कुछ अपने में विशेषता का आरोप करता है, उससे अभिमान आता है। इस वास्ते निषिद्ध कर्मों का त्याग। अब निषिद्ध कर्मों का त्याग वो मुख्य बताया तो लोग समझते हैं कि नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पाठ है, पूजन है, ये भी तो विहित कर्म ही है। तो ये विहित कर्म नहीं है, ये भगवत उपासना है। कर्म जितने किए जाए उन कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है, निष्काम भाव की ताकत है। और भगवान की उपासना की जाए उसमें महत्ता भगवत के संबंध की है, तो भगवान का संबंध है वो जीव का उद्धार कर देता है। इस वास्ते भगवत संबंधी जितनी बातें हैं वो कर्म नहीं है, वो उपासना है। तो उपासना तो कल्याण करेगी ही। इस वास्ते इसमें ऐसा नहीं कि भाई निषिद्ध का त्याग करो तो बेहद कई इतनी बात नहीं, तो राम राम क्या जरूरत हुई, ऐसा नहीं है। परमात्मा की उपासना, परमात्मा का चिंतन, पाठ, पूजन, सत्संग, ये विहित भी बहुत काम की चीज है, ये कर्म नहीं है। सत्रहवें अध्याय में तीन श्रद्धाओं का वर्णन है। अगर ये चल करके यज्ञ, दान, तप, दान का वर्णन है, दान के बाद ओम तत्सत का वर्णन है, तो तत्कार सत का वर्ण है, सत के 5 अर्थ की है। अगर ये सत कर दे अश्रद्धा होतम दत्तम तपस्तम कृतम जयत, तो वो अश्रद्धा होतम होम दत्तम दान और तप्तम तप और जो कृतम जो किया जाए, तो ये सब कर्मों का वाचक ही है, ये उपासना का वाचक नहीं है। श्रद्धा पूर्वक ओम सत्सत ये उच्चारण करने का विहित कर्म है, कर्म नहीं है, उपासना है। इस वास्ते इसकी बड़ी महिमा है। भगवान का संबंध किसी तरह से जुड़ जाए वो कल्याण करने वाला है। कर्म होते हैं उन कर्मों में निष्काम भाव कल्याण करने वाला है, कर्मों में कल्याण की ताकत नहीं है। कर्म जो फल देगा खत्म हो जाएंगे, जैसे कर्मों का आरंभ होता है उसकी समाप्ति होती है, ऐसे उसका फल भी पैदा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नश्वर फल होगा। और परमात्मा की उपासना का फल नश्वर नहीं होगा, वो भगवान के साथ जितना क्या संबंध जुड़ता चला जाएगा उतनी उतनी उन्नति होती चली जाएगी। निष्काम धाम ये बताएगा निहाभिक्रमणा सृष्टि, थोड़ा भी आरंभ कर दिया है निष्काम भाव से कर्म तो उसका नाश नहीं होता, क्यों सकाम कर्म है वो फल देकर नष्ट हो जाता है। काम ना कुछ नहीं है, थोड़ा ही किया तो वो जमा होता है, उसका नाश नहीं हुआ। और प्रतिवारियों ने विद्य से उसका उल्टा फल नहीं होता, सकाम भाव से किया जाए कर्म उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे पुत्र के लिए यज्ञ किया और उसमें कमी रह जाएगी तो पुत्र के अंग भंग रहेगा, कोई कोई अंग कम हो जाएगा। निष्काम भाव से कम किया तो उसे नहीं होता। जैसे कल्पना करो कि नौकर है, और वो लालटेन जगाने लगा और शीशा फूट गया तो धमका में एक शीशा तोड़ दिया, एक ज्यादा कर दी पैसे लगेंगे तुम्हारे। अब कोई सज्जन आए अंधेरा आए तो क्या ऐसा अंधेरा मैं कर लेता हूँ, मैंने कर लो नहीं मैं करता हूँ, ऐसे अगर किया हाथ टूट जाएगा तो उस पर जुर्माना नहीं होता कि तुम शीशा तोड़ दिया। तुम आप ही कुछ लेते ही नहीं, आप से कुछ चाहता ही नहीं, और तो क्या सेवा करना चाहता है तो कहते मैं तोड़ गया। हमारा आशीन तुम देगा भाई क्या सुरक्षा बड़ी बात होगी कि हमारे से नहीं टूट जाएगा, इसमें बात है क्योंकि वो चाहता नहीं है। नौकर चाहता है तो उसको सावधानी ज्यादा करनी पड़ती है, ऐसे सकाम करने को शास्त्र की सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है, नहीं तो उल्टा बल हो जाता है, दोष लग जाता है। तो इसमें नेहा भी कृणा से होती है, प्रतिवाय होने विद्य से स्वर्ण मत से धर्म से चाहे तो महत्व चाहे थे महत्व भयात, थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। तो थोड़ा अनुष्ठान में दो बात होती है, एक भाव की न्यूनता और एक क्रिया की न्यूनता। तो क्रिया न्यून हो भाव निष्काम हो तो तत्काल कल्याण कर लेता है, और भाव निष्काम है पर सकाम भी भाव से आता रहता है तो निष्काम भाव बढ़ करके कल्याण कर लेगा, उद्धार उसे हो जाएगा। और निष्काम भाव बढ़कर थोड़ी देरी लगेगी, पर निष्काम भाव से किया हुए कर्म का फल उद्धार ही होता है, वो फल देकर नष्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, तो फल अच्छा है ही नहीं उसमें। फल शब्दों निबद्धते गीता माया है कि फल में आसक्त होता है वो बंद जाता है, और फल नहीं चाहता वो बंधता नहीं है, निष्काम भाव से करता है जितना करता है ऐसा है। और निष्काम भाव पूरा है, मन उद्देश्य हो गया कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही काम करेंगे तो उसका कल्याण होता है। अब कोई बात लागे उद्देश्य हमारा भगवत प्राप्ति का ही है ऐसा है तो कभी कभी दुख दूर करने के लिए सुख की प्राप्ति के लिए कामना हो जाती है, वो सकाम हो जाता है। तो संसार के सुख के लिए और सांसारिक दुख के लिए कामना नहीं करनी चाहिए, उद्योग करना चाहिए, प्रयत्न करो चेष्टा करो उसमें कोई बात नहीं, परंतु इसकी कामना मन में करने से वो सकामता आ जाती है। तो इसको दूर करके ये जो राग द्वेष है राग द्वेष इनके वशीभूत न हो गए, राग पूर्वक ग्रहण न करना और क्रोध पूर्वक त्याग नहीं करना, करना काम है शास्त्र की आज्ञा इस वास्ते करते हैं, न करना के शास्त्र निषेध किया इस वास्ते नहीं करते हैं। तो दशमा शास्त्र प्रमाणम के कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र है, संत महात्मा है, संतों का आचरण है, भगवत आज्ञा है, वेद है, स्मृति है, ये प्रमाण है। यह कहे जैसे करे और निषेध करे वो न करे, इसको लेकर उनका काम सब चलता है। इसलिए जो साधक है वो असाधनों का साधन विरुद्ध काम न करे, ऐसे संत की बात है सत्संग करना चाहिए, सत्संग से लाभ होता है तो कुसंग से नुकसान भी बहुत होता, कुसंग है वो में जो बुरे भाव पैदा होते हैं जमा है वे सब उद्बुद्ध हो जाते हैं, उन्हें बुरे भावों को बल बन जाती है तो भीतर के भाव ज्यादा हो जाते कुसंग से नुकसान ज्यादा होता है, और सत्संग से सद्भाव भीतर के ये बात इस वास्ते कही कि सत्संग के द्वारा छूटते इतना ही लाभ नहीं होता है, भीतर के भाव भी पवित्र होकर के सहायता करते हैं, और कुसंग से ऊपर का ही नुकसान नहीं होता है, भीतर से जो दुर्भाव दुर्गुण है उनको पोषण मिल जाता है, खुराक मिल जाती है, खराब आसन हो जाते हैं। इस वास्ते रामायण में आया है कि बड़ भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जल दे ही बिधाता, नरकों का निवास बड़ा अच्छा है पर विधाता दुष्टों का संग न दे। तो नरकों का संग अच्छा है, क्यों अच्छा है कि नरकों में जाने से तो पाप नष्ट होते हैं और कुसंग में जाने से पाप पैदा होते हैं, तो एक तो पाप पैदा होते हैं एक पाप नष्ट होते हैं, तो पाप नष्ट हो वही अच्छा है ना। तो बोलो भल बास नरक कर नरकों में अच्छा विचार कोई हर्ज नहीं है। और दुष्ट संग दुष्टों में भी दुष्ट ज्यादा माना है नास्तिकता, जो भरवागुरु नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, ऐसे पुरुष है उनका संग महान भयंकर होता है। वो संग पीछे के आस्तिक भावों को काट लेता है जिसमें नुकसान होता है। और शराब काम करने जैसे शराब पीने वाले हैं, और जिस तरह से गुरु पत्नी का बन करने वाले हैं, सोना और रत्नों की चोरी करने वाले हैं, ब्राह्मण की हत्या करने वाले हैं, ये चार महापापी बताए। तो महापापियों के संग से पाप न करने पर भी 3 वर्ष कर ले तो उनको वही दंड होता है, ऐसा शास्त्र आया। इस पर एक बात आगे आ गई। अब जैसे कोई पति है और मदिरा पीता है, अब पत्नी को पाप लगेगा 3 वर्ष, 3 वर्ष के अंदर उम्र बरसात रहना पड़ेगा, तो उसकी नियत नहीं है, वो पीती नहीं है और पति को भी समझाती है, पीने से दूर करती है, तो संग का 3 वर्ष रहने से उसको दंड ये लागू नहीं होगा, उसकी नियत नहीं है, वो करना चाहती नहीं, पति से भी ये दुर्व्यसन छूट जाए ऐसी आशा रखती है, ऐसा उद्योग करती है, तो उसके लिए ये लागू नहीं होता। तो इतना बार संग कर लिया तो इसको इतना दंड होगा, वो संग उसने किया नहीं है, वो तो स्वाभाविक पिता ने कन्यादान कर लिया, अब वो जिस आश्रम जुड़ गया, अब क्या किया जाए। तो वो अपने धर्म का ठीक पातिव्रत का पालन करती है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका नहीं अपने तपोबल से पातिव्रत तप से पति का भी उद्धार कर सकती है, इसमें उसमें बल आ जाता है। जैसे रावण था तो रावण रुआने वाला जो लोगों को रुलावे उसका नाम रावण, तो सब रोते थे उसके संग से ही, सुख दुख देता था। उसकी रानी मंदोदरी अपने धर्म का पालन करती थी तो उसको ज्ञान था भगवान राम जी का भी, बहुत समझाती थी कहती थी, तो अपने पति प्रति तेज से वो जानती थी। तो पति प्रति पातिव्रत पालन करने से पति की शक्ति, पति का धर्म, पति का तपोबल प्राप्त होता है, इतनी बात नहीं है, ये तो प्राप्त होता है पति पत्नी में दोनों में, वो धर्म पत्नी होती है, पति के किए हुए पुण्य में भागीदार होती है, पाप में भागीदार नहीं होती। छोटा होता है वो मुनाफे में भागीदार होता है, घाटे में नहीं। घाटा लग गया घर में तो बालकों को कुछ नहीं होता, मिठाई अधिक बालकों को मिलती है छोटे छोटे, इस वास्ते उसके भागीदार छोटे होते और आप उसके भागीदार बड़े होते हैं। धूप है, एलिया है, मेहंदी के लगे है, तो जो ऊंची ऊंची उस करती जाती है तो बड़ों पर ही आफत आती है, उन पर ही जिम्मेवारी रहती है, छोटे बोझ करते हैं आनंद से, उन पर जिम्मेवारी नहीं रहती, वो आज्ञा पालन करते हैं, बड़ों के हुक्म में चलते हैं, तो उन पर खुद पर क्या जिम्मेवारी, कोई जिम्मेवारी नहीं। इस वास्ते छोटा बन के रहना अच्छा है। नानक नन्ना हुए रहो, नानक नन्ना हुए रहो, जैसे नन्ने दूब और घास जल जाए, खोगी वो छुट्टी है। वर्षा आती है और बहाव आता है पानी का तो पेड़ टूट जाते हैं, बैठ होती है वो ऐसे हो जाती है, वो टूट नहीं जल जाए फिर खड़ी हो जाती है, ऐसे दूब आती है भैया नमल हो जाते हैं, फिर पौधे खड़े हो जाते हैं, तो आफत आने पर भी उसमें ज्यादा नहीं आती। बड़े बड़े पेड़ होते नदी के किनारे, बड़े बड़े पेड़ सब वो बाहर ले जाती है नदी, वो खड़े में आकर रहते हैं, पानी का लगता है जो उखड़ जाते हैं। ऐसे अभिमान है यो बल पतन करने वाला है। संस्कृति मूल शूल पर लाना, सकल शोकदायक अभिमाना, संसार का मूल है और नाना शूल पर है और सकल शोकदायक अभिमान संपूर्ण शोकों को देने वाला है। आशु संपत्ति में अभिमान रूपी बहरे के वृक्ष के नीचे सब आशु संपत्ति रहती है। पुराणों में कथा आती है, महाभारत में कथा आती है, तो बहेड़ा का वृक्ष है उसमें कलयुग का निवास है। ये जब नर महाराज में भीतर प्रवेश हुआ है कलयुग, तो वे चारों ही लोग आए थे तो कलयुग को बड़ा गुस्सा आया। दमयंती का विवाह था, दमयंती बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर होने से उनके राजा महाराजा भी आए, देवता भी भरने के लिए आए वरुण और जमराज और कौन कुबेर इंद्र, ये चार देवता उसे भरने के लिए आए। तो चार युग थे सतयुग त्रेता द्वापर, ये युग वेदी गए तो उनके बात हुई तो देवता लोग ही भरने के लिए गए। बड़ी उससे बात आ गई, थोड़ी बीच में कह दू, वो भी प्रसंग तो इतना नहीं है। ये जब बड़ी करनी चाहिए तो नल भी गया वहां, राजा लोग भी सब गए, तो नल बड़े सत्यवादी बड़े धर्मात्मा और दृढ़ प्रतिज्ञ श्रेष्ठ थे। तो इंद्रादि देवताओं ने कहा कि नल तुम जाओ हमारा दूत बन करके और दमयंती को कह दो कि तुम्हारे बनने के लिए देवता आए हैं। तो मैं कैसे जा सकता हूँ, अंतःपुर होता है रणवास, उसमें तुम दूसरा पुरुष को जा नहीं सकता कि हम तुम्हारे को विद्या देते हैं, तुम्हारा कोई नहीं देखेगा, तुम चले जाओगे नहीं होगी, तो हमारा संदेह कर ले जाओ। तो नल ने कहा कि जिस काम के लिए आप आए हैं उसी काम के लिए मैं आया हूँ, तो मैं जाऊँ तो मेरा काम बढ़ाऊंगा, आपका कैसे करूँगा, मैं भी दूसरी काम के लिए आया हूँ। कि नहीं हमारा विश्वास है, और दूसरा तुम कहो तो कह दो, वरना हमारा दे देना परिचय, ऐसे देवता आए हैं तो वो देवता छोड़ मनुष्य थोड़ी बढ़ेगी, ये बात अच्छी कह दूंगा, अच्छी तरह से समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, सत्यवादी थे ही। तो वे गए तो हंस थे, वो हंसों पहले परिचय हुआ था, तो वहां गए तो रोक टोक नहीं हुई, तो वो अचानक राजा गए तो दमयंती ने देखा तो शर्म आई, बड़ी थी अवस्था में शर्म आई, एक शर्मिंदे हुई। पीछे उसने हंसों के द्वारा सुना था वो रूप और रंग उनका, ये नर महाराज बड़े सुंदर थे, तो सुंदरता देख करके दमयंती का मन नल की तरफ आकृष्ट हो गया, और नल का दमयंती की तरफ ये पतिव्रताएं होती है, और ये बड़ी विचित्र बात है, सूरज को रोकने बड़ा प्रतिबंध बड़ा तेज होता है, तो वो अपने उस पति को ही पाती है, जन्म जन्मांतर में भी और के साथ नहीं जाती वो, ऐसा उन्हें तेज होता है। तो दोनों का ऐसा विचार था, बढ़ गए थे, फिर उसे परिचय पूछा तो अपना परिचय दिया कि मैं नर हूँ। तो फिर बातें होने लगी, कई दासियां थी पास में, सखियां बहुत सहेलियां थी, बात हुई जो बाद ही बाद में उन्होंने कहा कि मैं अब आए नल रूप से नहीं आया हूँ, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, देवताओं का काम करने के लिए आया हूँ, मैं अभी मैं मिलने के लिए स्वतंत्र अपनी तरफ से नहीं आया हूँ। क्या बात है, तो कहा ये यमराज है, इंद्र है, ये अग्निदेव है, वरुण देव है, ये चार देवता तुम्हारे स्वयं मत में आए हैं, बढ़ने से तुम सुख देव लोग में सुख पाओगी और बड़ी हो जाओगी, इस बात से उन्होंने कहा है कि हमारा परिचय ठीक दे देना, खास इंद्र जो त्रिलोकी का राजा है ऐसे बड़े हैं। तो रविंद्र ने कहा भाई मेरा तो जो विचार है वही विचार है, जितना देवता और कुछ भी हो मेरे विचार नहीं है, ऐसी कुछ बातें हुई, वहां प्रसंग लंबा चौड़ा है, अब मेरे सबको याद भी नहीं है उतना, तो ऐसी बातें हुई। फिर आकर के उसने कह दिया कि साहब वो तो मेरे को स्वीकार करती है, आप लोग स्वीकार नहीं करती। तब वहां पर सभा जुड़ी, उसमें राजा लोग सब बैठे थे, उसमें है महाराजा नल भी बैठे थे, तो नल जैसा है वैसा के रूप चार देवता धारण कर लिया, वे चारों देवता और नल बैठे, तो पांच नल बैठे, उसे देखा अभी कौन सा है, अब मैं नल को स्वीकार करूं तो स्वीकार किसको करूं, ऐसे विचार कर किया, तो देखा उसने परीक्षा करी, वो शास्त्र सुनने वाली समझने वाली थी, उसने परीक्षा करी, तो देवता होते हैं वो बैठने पर भी जमीन से ऊंचे रहते हैं, जमीन में टिकते नहीं, क्योंकि उनका तेज में शरीर होता है, हमारी तरह पृथ्वी का शरीर नहीं होता, इस वजह से पृथ्वी से ऊपर रहते हैं। दूसरी इनकी बात है कि वो देखते हैं तो ये पलकें पड़ती है मनुष्यों की, देवताओं की पलकें नहीं पड़ती, तो ये पहचान हुई। दूसरे में देवता है उनकी गंध में इतनी सुगंधी रहती है शरीरों में, ऐसी देवताओं उनकी छाया नहीं पड़ती, दीपक दिया जाए सके तो सूर्य के चंद्रमा से छाया पड़ती है मनुष्यों की, देवताओं की छाया नहीं पड़ती। तो वहां प्रकाश थे उसमें भी देखा तो उन्हें ऐसे विचार करके देखा राजा न क्या ऐसे होता था, इतना होने पर मन में देवताओं से प्रार्थना करी कि मेरे पर आप कृपा करें, मेरे पति को आप चला रहे, मैं न कोई बनना चाहती हूँ, ऐसे प्रार्थना करी तो देवता खुश हो गए। फिर वो नल को अपनी बरमाना पहरा दी। तो उस समय में ये युग भी सतयुग देवता द्वापर कली, तो कलयुग कुपित हो गया कि देवताओं का त्याग करके इसमें मनुष्य ऊपर आए, तो ये खबर गई अच्छी तरह से, तो वो कलयुग प्रवेश हुआ। नल के पीछे पड़ा, नल के पीछे पड़ा तो इसमें भीषण प्रवेश कर, तो कई दिनों तो ब्याह और होने के बाद राज में राजधानी में करते रहे। एक दिन पेशाब करके आकर के हाथ और धोना कुल्ला करना के पैर धोए नहीं, वो पैर नहीं धोए, उस अशुद्धि में प्रवेश हो गया। तो अशुद्धि कल क्या था, भूत प्रेत प्रसाद आदि अशुद्ध रहते हैं, तो कलयुग प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया तो बुद्धि बदल गई। फिर पुष्कर अपना भाई था, उसे जुआ खेला, उस जुए में सब हार गया, सब राज संपत्ति सब हार गया। तो भाई बेचारी दमयंती क्या कर, दमयंती ने बहुत कहा, मंत्रियों ने बहुत कहा, गांव के बड़े आदमियों ने कहा, देश के भले आदमियों ने कहा कि आप जुआ मत खेलो, बंद कर दो, परंतु न की तो गति हुई थी, जैसे महाराज की दृष्टि की न में दशा हुई, जैसे न की दशा हुई, सब निकाल दिया। तो पुष्कर ने कह दिया कि हमारे राज्य में कोई इनको आश्रय न दे, कोई भोजन न करावे, नहीं तो वो दंड का भागी होगा, ऐसा देर को निकाल दिया। एक वस्त्र तो नल के पास रहा, एक वस्त्र दमयंती के पास, एक एक वस्त्र कपड़ा बस इसका पहले ऊपर, ऐसे वस्त्र रहे। बड़ी भूख लगी, प्यास लगी, अब क्या करो, तो इनके पुत्र से इंद्रशेरी ने उनको अपने एक सारथी के साथ में ननिहाल भेज दिया। दमयंती ने अपने भीष्मक पिता के घर पर बच्चों को भेजा कि तुम वहां पर हो, सारथी का तुम भी वहीं रहो और उनको वहां पर पहुंचा दो, तो हमारा कहा हमारा पता नहीं ऐसा कह देना। तो दमयंती ने बहुत कहा कि आप चलो हमारे पिता के घर पर चलो, कि मैं नहीं जाऊंगा, राजा के वहां पर मैं राजाओं के लिए जा सकता हूँ, गरीब हो गए मैं नहीं जा सकता, मैं सहायता के लिए नहीं जाऊंगा, रक्षा के लिए शास्त्र नहीं जाऊंगा। और बताएगा देख ये तुम्हारे कुंडल पर उस धारा है, ये रास्ता तुम्हारे पीहर का है। तो वह बड़ी नाराज हुई कि मेरे को पीहर का रास्ता क्यों बताते हो, मैं तो आपके साथ रहने वाली हूँ, सुख में साथ रहूं दुख में नहीं रहूं, ये स्त्री का धर्म नहीं है, तो मेरे को क्यों बताते हैं कि नहीं नहीं मैं बताऊं। दुखी हो गई, नल के मन में आया कि इतना कोमल शरीर है ये वनवास का दुख सह नहीं सकेगी, वहां आराम तो है नहीं, तो वो मना किया तो चले गए। फिर रात्रि में एक शून्य धर्मशाला थी जगत में, उसमें वहां जाकर सो गए। सोते नींद आई, नल को नींद नहीं आई, वो देखता है स्त्री की तरफ तो देखता है व्याकुल होता है कि कैसे निभेगी, अब जंगल में तड़प रहे कष्ट है, आराम तो यहाँ है नहीं, और बड़े राज प्यार से पड़ी हुई राजा की पुत्री है, अब मेरे साथ कष्ट कैसे सहेगी। फिर बाहर गया, फिर भी तो आया, ऐसे जाते जाते अंत में वहाँ एक तलवार पड़ी थी, उससे वहाँ एक बस क्या हुआ कि वे हंस बन कर गया, पासा जो खेलते थे चार वे कलयुग के थे, वे पास हंस बन करके आए, तो वो हंस बड़े सुंदर देखे तो पकड़े काय से, तो नल में अपनी धोती उस पर डाली, वो धोती लेकर के उड़ गए। एक बस हो गया, दोनों पास बस एक रह गया, आधा बस आधा दमयंती है, तो वो दमयंती को छोड़ा तो तलवार से आधा बस काट करके उसमें छोड़ दिया, आधा कपड़ा अपने पर ले लिया, इस तरह लेकर दुख में गए। दूसरे दुख भगवान नंद ने कई जगह देखा, कोई संघाई बाघ है, कई तरह के बहुत हो जाए, ऐसे दमयंती सुबह जगती है तो देखा भाई महाराजा नहीं है, क्या बात है? तो वो कहना लगे, महाराज आप कहाँ हो, देखो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, दुख पा रही हूँ, बताओ आप छिपे क्यों हो, मेरी मछली दिल की क्यों करते हो, आओ आप ऐसे कहा, परंतु कोई पता नहीं कौन उत्तर दे, तो चले गए थे। तो एक लिए ये भी जंगल में भटक गई, अब कहाँ जाओ भाई, अब जंगल ही जंगल है, तो उन्हें चल गया। फिर उसके सामने कई बाघ आए, सीता आए, एक बधिक था, बहेजा, वो जानवरों को मारने के लिए शिकार में जंगल में था, वो देखा आगे अजगर आ गया, उस अजगर ने दमयंती को पकड़ लिया, दमयंती पकड़ के पलंग तरफ से निकलने लगा, तो वो जो बधिक था वो आया, उसने बाण मार करके अजगर को काट दिया और उससे निकाल दिया, फिर जल से स्नान आदि कराया, तो उसका मन खराब हो गया। दमयंती ने कहा तुम जीना चाहता तो चला जा, तो कुछ उसने चेष्टा देखी तो उसने साफ दिया, भस्म हो गया वहाँ ही, वो तो बस दमयंती वहां से चली बेचारी। आगा देखा भाई ऋषियों का आश्रम आया, बड़े ऋषि तपस्वी तप रहे हैं, जंगल बैठे भजन कर रहे हैं, वहां जाकर मिले उनसे, तो ऋषियों ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, ये थोड़े दिन कष्ट के हैं, तुम्हारे सब दूर हो जाएंगे, पति मिल जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, तुम धैर्य रखो, ऐसे आश्वासन मिला, तो उसको शांति मिली। फिर उसे दूर थोड़ी की जाकर देखते हैं तो हम आश्वासन कुछ नहीं, एक भी सही है, केवल आश्रम आश्वासन देने के लिए ही वो प्रकट हुआ, अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे जाते जाते चली गई आगाड़ी, तो बड़ी विचित्र कथा है। आगे एक राजधानी में गई तो आधा कपड़ा है आधा, उससे अपने लज्जा निवारण कर दिए, पूरी साड़ी नहीं है, ऐसी अवस्था में मेला को चले हो गए, बड़ी बड़ी आफत आई, हाथियों का बड़ा युद्ध हुआ, आपस में जबरी बड़ा हुआ, तो वहां फिर देखा तो उसने महारानी ने देखा तो भाई क्या बात है, कौन है लड़की, कोई ऐसी है छोरे, वो कोई सजाते हैं, कोई पीछे फिरते हैं, कोई धूल फेंकता है, ऐसे वो अपनी ऐसी मशीन चलती है। तो दासियों को क्या, दासियों को भेजा कि तुम जाओ ये कौन है इसको बुला लाओ, तो बुला कर लिया है। वो मासी थी खास, दमयंती की माँ की खास बहन थी, परंतु उसने परिचय नहीं दिया, मैं तो आ गई कौन है, मैं भिखारी हूँ क्या हूँ, ऐसी हूँ तो तुम यहाँ रहो, तो उसे कह दिया कि मैं किसी पुरुष की सैया नहीं बिछाऊंगी, झूठन नहीं मानूंगी, ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए उसको कह दिया, ऐसा काम नहीं करूंगी, और किसी पुरुष के साथ में बातचीत नहीं करूंगी, कहीं भेजो तो वहीं तक जाऊंगी नहीं। तो ऐसे उसने बासी ने कहा तेरी मर्जी सब ठीक है, मेरी सुनंदा लड़की है, तेरी अवस्था बरोबर है, तुम सखियां सखियां साथ में रहो, खूब आराम से, कोई चिंता मत करो। रह गई वहां, तो ये तो यहाँ रहेगी, नल महाराज निकले वहां से, तो वो पहुंचे पहुंचे अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के वहां पहुंचे, ऋतुपर्ण राजा था, उसके वहां गए तो उससे पहले गए कर्कोटक नाम का नाग था, सांप, तो वो सांप पड़ा था, लाल लगी जंगल में, लाग लगी तो कर्कोटक ने कहा अरे नाग तू मेरे को निकाल यहाँ से, मेरे को नाग जी का साप हो गया है, मैं खसक नहीं सकता, पड़ा हूँ और अभी आग आ जाएगी, ये दवा में मर जाऊंगा, तो निकाल, तो उसने निकाल के भारी था बड़ा, उसने उठाया ऊपर, उठा कर ये चला, तो देख तू चला है कितने कदम चलता है, वो कदम गिन है, तेरा ऋण मैं उतारना चाहता हूँ, मेरे पर ऋण रखना नहीं चाहता, इस वास्ते पैर गिन तो वो कब मिलने लगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस कहते दस ही आयो, दस धातु है उसका दस का अर्थ हो जाए खाचा, दस तुम दस तार दस तुम दस दसानी दशावर, दस दस तार दस तुम दस दशानी दशावर दशाम, दस तू दस तार दस तुम दस, तो दस मध्यम तो सही हो जाए दसिया हाथ हो गए सूप उसका कलसा हो गया ऐसा बेडोड़ सब बन गया। कहते हैं मैंने इस बात से दशा है दो कारण है, एक तेरे भीतर कलयुग बैठा है तो ये जहर का जितना असर कलयुग में होगा तेरे नहीं होगा, और तेरा रूप बदले बिना तू कहीं रह सकेगा नहीं, इस बार तेरा रूप बदल रहा है करोड़ चूक तो अंतर ध्यान हो गया ना। ये गए वहां अयोध्या ऋषि पर्ण के यहाँ पर, तो कहाँ पर क्या जरूरत है तू मैं जानता हूँ, कई विद्या जानता हूँ। अच्छा तो घोड़ों की विद्या, हाँ घोड़ों की विद्या मेरी बहुत अच्छी आती है, तो घोड़ों के ऊपर अवसर अवसर रख दिया कि तुम इनका काम करो, ऐसे रहने लग गए। अब वे बालक पहुंच गए अपने नाना ने, तो बता भाई हमारी दमयंती कहाँ है, हमारा दामाद नल कहाँ है, उसकी बड़ी इच्छा हुई। तो ब्राह्मणों को भेजा कि इतना लवे जितना इतना काम देंगे इतना धन देंगे, जो कोई है नल क्या और दमयंती का पता बता दे हम वैसा देंगे। तो वे बहुत बहुत से एक ब्राह्मण था जो दमयंती के भाई का मित्र था, वो पहुंच गया वहां जहां दमयंती रहती थी, वहां पहुंच गया तो वहां ब्राह्मण भोजन होता था राजा के यहाँ पर, और ब्राह्मण भोजन को ब्राह्मण भी आ गया तो उसने देखा, तो ब्राह्मण को दमयंती ने पहचान लिया कि ते हमारे भाई का मित्र उपर मन में आया कि मेरे खोजने के लिए आया और क्या आया है, तो उसको एकांत में बात करी, बुलाया बात करी, बात करी तो बेटी तो ऐसी है कब मैं ऐसे हूँ आप विशेष मेरे प्रकट न करें ऐसी बात, तो वो आए थे समझने के लिए ही। इस बात से उन्होंने कहा कि ये महाराज नल की स्त्री है, भीष्मक क्या पिताजी का नाम उनकी बेटी है कुंडलपुर की, ऐसा परिचय दिया। तो फिर उसको मासी को पता लगा, राज को पता लगा, राजा को, उसने कहा बेटी तो मेरी बेटी ही है, मेरी बहन की बेटी, मेरी भी कन्या ही है, पहले बताया क्यों नहीं। फिर स्नान और कया तो लाल चिन्हार जन्म जात तो ये पहचान थी, फिर वो मैल से ढका हुआ था उसने देखा नहीं दिया, फिर देखा दो बड़ा विचार आया कि मैं बहुत आराम से रही हूँ सुनंदा के साथ में, जैसे सुनंदा आपकी पुत्री है ऐसे मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं बड़ी आराम से रही। फिर उसने महाराज राजा हाथी घोड़े बड़े लवाजमे के साथ आदर के साथ उसको पिता के घर पर पहुंचा दिया, जैसे महाराजा का आदर होता है वैसे ही। वहां पहुंच गई, वहां पहुंचा कि महाराज हमारे प्राणनाथ कहाँ है, तो राजा ने विचार किया वहां क्या विचार करे भाई, तो खूब विचार किया हो वो विचार किया तो इसको भेजो, ब्राह्मणों को बहुत भेजा, ब्राह्मण सब घूम घुमा कर आ गए, नल का पता नहीं लगा, नल पहचान ही नहीं आओ, वो तो रूप ही बदल गया कहीं पता नहीं लगा। तो दमयंती ने कहा कि वो छिपे हुए किसी की पहचान में आएंगे नहीं, उनका उपाय तो मैं एक बताती हूँ, वो उपाय है हाँ बताओ। ब्राह्मणों का देखो आप जिस शहर में जाओ उस शहर में ऐसी बात कहना कल दमयंती अपना स्वयंवर कर रही है, मन ऐसी बात कह लो पहुंच न सके, ऐसा कर लो कभी है सुबह ही है आज ही है वो स्वयंवर, इसी बात कहना तो वो नल वो आ जाएंगे और आ नहीं सकेगा, इस बात ऐसा कर लो भेजा। तो वो जाते जाते व्यक्ति सब जगह कहने लगा, तो वहां ऋतुपर्ण राजा थे अयोध्या के, उसके सामने कहा, तो ऋतुपर्ण ने कहा भाई अब कल ही सुबह ब्याह है, कल कल दिन नहीं तो फिर मैं कैसे पहुंचू, तो उसी बड़ी चिंता हुई। तो नल था बाहू का नाम था, तो बाहू बाहू पूछा कि बाहू क्या करें, कि आप जो वहां जा रहा है कहा वहां भी मैं पहुंचा दूंगा, कि समय बहुत थोड़ा है, ये तो बहुत जरूर से आधे समय पहुंचा, ठीक पहुंचा दूंगा मैं। कैसे पहुंचा देगा, कि मैं घोड़ों की विद्या को जानता हूं, ऐसे घोड़े तत्काल पहुंचा दूंगा। तो पहले बड़े बड़े मोटे मोटे घोड़े सामने रखे कि इनको जोतो। तो बाहू को बोला कि ये जोतने से मैं ये सा प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ पहुंचा दूंगा, मैं तो मेरे घोड़ा अपनी मर्जी से लो वो कहता हूँ पहुंचा दू। अच्छा तेरी मर्जी से गया। तो दुबले पतले से घोड़े लाया, वो उसने जोता, उनके कान में कुछ मंत्र फूंका और आप बैठो रथ पर, और रथ पर बैठ करके चले। तो रथ को चला तो थोड़ी देर तो जमीन पर चला और फिर मतलब आकाश में उड़ गए, इतने जोर से बेग से चले जो ऊंचे उठ गए। इतने में ऋतुपर्ण का दुपट्टा गिर गया, अभी गिर गया आगे वो पर 20 दिन दूर रह गया, अरे अभी गिरा अब चलवा चलते चलते ऐसा वेग से चलाया। तो ऋतुपर्ण पर बड़ा असर पड़ा, ये बाहु तो बड़ा तेज है। तो ऋतुपर्ण आप ही ऐसा तेज था जो वो बहेड़ा का वृक्ष था, बात उस वास्ते आई, अब वो बात आती है। बहेड़ा का वृक्ष था तो ऐसी तेजी से चलते हुए ऋषिवर्ण ने कहा इतने तो पत्ते हैं, इतने फल हैं इसके, इतने फल गिरे हुए हैं, इतने फल लगे हुए हैं, इतने पत्ते हैं, रस्सी उसे बंद कर दिया। कहते मैं गिनूंगा, आपने कहा इतने है तो मैं गिनूंगा, तो देरी हो रही है, देरी नहीं अपने चीज मैं पहुंचा दू, पसंद में आती बात है। उसने गिरा देखा तो दाल काट कर डाली के जितने पत्ते फूल भर भर बताए उसमें निकल आए। तो नल को बड़ा आश्चर्य आया, तो क्या बात है ऋतुपर्ण कहता मैं गणित विद्या को जानता हूँ, गणित विद्या में मैं बड़ा तेज हूँ, ऐसी बात है तो अच्छी बात है। अब तुम मेरे को सिखाओ कि तुम भी घोड़ा विद्या सिखाओ घोड़ों की, तो अच्छा पे सिखा अब चलो। अपने आपस में शर्त हो गई, वहां चले साहब तो वहां जाकर देगा तो विवाह का कोई नाम निशानी नहीं, दमयंत्री स्वयं भर करती है ये बात वहां सुनाई पहुंचाने के लिए, वहां कोई नाम निशानी नहीं। तो वहां पहुंचे तो राजा ने कहा महाराज आप कैसे आ गए, कहा आपसे मिलने के लिए आ गया मैं, तो इस तरह से तो आज अच्छी बात है बठाठ बार से लिया। दमयंत्री ने कहा कि ये जो राजा आए हैं तो उनके रथ की आवाज सुनकर कह दिया कि हमारे पतिदेव का है, ऐसा रथ और कोई चलने वाला नहीं है। पर देखा तो ऋषि पर्ण राजा और छासी एक बाहुक जो भज्जा साहब छोड़ चल रहा है, ऐसा राजा क्या बात है होने चाहे हमारे पतिदेव। तो बहड़े का वो घृणा नहीं फल उस समय कर्जू निकल करके एक बहड़े की पृष्ठ में प्रवेश कर गया और कहा मैं तुम्हारा दुख बहुत देखा, तुम्हारे शरीर में आया तो था दुख देने के लिए, मैं मेरे शरीर से चल रहा हूँ भीतर में जहर से बहुत दुख पाया, अब तेरा कोई नाम भी लेगा दमयंती का और तेरा ऋतुपर्ण राजा का कर्कोटक का नाम लेगा तो मैं वह तो दुख नहीं दूंगा। कर्कोट कश्य नागस्य दमयंत्या नलस्य ऋतुपर्ण से राजर्ष कीर्तनम कलिदासनम, महाभारत ग्रस्त हो गए, इनका नाम कीर्तन करे तो कलयुग का जोर नहीं था, कलयुग में बहुत दुख पाया तो मैं वही नहीं चाहूंगा। तो बहड़े के वृक्ष में कलयुग का निवास है। तो बात कह रहा था जो अभिमान है, अभिमान रूपी ये बहड़े का वृक्ष है, इस अभिमान की छाया में सब आसुरी संपत्ति जितने अवगुण सब रहते कलयुग का निवास होता है। इस वास्ते अभिमान है सबसे मूल शूल पर बनाना सकल शोकदायक अभिमाना, इतना विश्वास अभिमान नहीं करना चाहिए। अब वहां गया तो दमयंती ने कहा कि देखो आप महाराज ऋतुपर्ण को जहां उतारो वहां पर एक तो ये करना कि दरवाजा छोटा हो, ऐसा मकान हो जिसमें नीचे झुकना ही पड़े, ऐसे दरवाजे वाले मकान में रखो और वहाँ रसोई का सामान रखो परंतु आग वहां मत रखना और जल भरना नहीं, खाली बात रखना जल के वो भरना नहीं, ऐसी बातें कही। तो वैसा ही किया तो वो बाहु जाता है तो फिर से ऊंचा हो जाता है। अगर जाता है रसोई बनता है, रसोई हमारे बाहु के राजा ने कहा हमारे बाहु बनाएगा, तो रसोई बनाई, तो रसोई बनाई वो बड़ी सुंदर। अब रसोई बना आग नहीं था तो वो ले करके फूंक दी, आग प्रकट हो गई। अब जल नहीं था उनके हाथ देकर दिया, जल प्रकट हो गया। वैष्णव का तू जा देख, कहना कुछ नहीं तो दिया अलग, तो देखा कि बात तो हमारे महाराजा की है। अपने इंद्रसेन जो लड़का लड़के थे ना, उनको गोदी में देख पहुंचे, वहां से पहुंच गए, उन बाहु को देखा, बाहु आंसू पड़ने लगे। दासी ने कहा ऐसी बात हुई है तो तू एक बात कर, उनकी रोटी बनाई हो तू भैया, उनके हाथ की तो भैया बच्चों को रोटी दो, रोटी दे दी उनके। वो बड़े सुंदर रसोई बनता था, उसमें सुगंध आती थी, बड़ा स्वाद होता था। ये वरदान दिए थे उन चार देवताओं ने। उस इंद्र ने कहा भाई तुम्हारे एक तो माला नहीं सूखेगी, एक तुम्हारे दरवाजा नीचा है तो ऊंचा हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा बिना प्रकट हो जाओ, वरुण देव ने कहा तुम याद कर जल्द प्रकट हो जाऊंगा। ये सब वरदान दिए हुए थे, दमयंती जानती थी। दासी ऐसा चमत्कार देखा तो बड़ा विश्वास हुआ, तो फिर भी उन भोजन कर लिया। तब दमयंती ने अपने पिता से कहलाया कि मैं एक बात पूछती हूँ, बोलो बेटा क्या चाहती हो? कि ये जो भावुक है उससे मैं मिलना चाहती हूँ, परंतु रणवास में आवे पर्दा रहेगा, पर्दे के इधर वे रहेंगे, इधर पर्दे मैं रहूंगी और मैं बात पूछूंगी। कुछ बात पूछा? हाँ बेटी, प्रबंध कर दिया राजा ने। तो वो भीतर पर्दे पर्दे में ही बात पूछती है कि देखो ऐसे ऐसे पुरुष भी होते हैं बेचारी देवताओं को छोड़ करके स्वीकार करे, उसमें सोचती हूँ चंद्र में छोड़ करके चले जाते, ऐसे ऐसे भी आदमी होते हैं, बयान नहीं आती उनको, प्रेम नहीं आता, कितना कितना त्याग किया उसकी तरफ कुछ विचार नहीं आया, उस सूर्य जंगल में अनाथ बिचारी रही, ऐसे त्याग करने वाले पुरुष ऐसे होते। तो नर्मदा ने कहा कि देखो ऐसी ऐसी स्त्रियां भी होती है जो ब्याई हुई है स्वागन है दूसरा त्याग करती है स्वयंवर करती, ऐसी स्त्रियां भी होती है। तब सुनने की बात ठीक है, तब पूछा कि आपका स्वरूप कैसे है, क्या बात है ये, दोनों की बातें मिल गई। तो उसने कहा करकोट ने कपड़ा दिया था, ये कपड़ा तू ले वो सही पर कर लो, तेरा स्वरूप वही हो जाएगा जो पहले का था। तो उसे कपड़ा लेकर मैं दिया, तो फिर मेरी दमयंती दमयंती रो पड़ी, मैं भी रो पड़े, बहुत दिनों से मिले, बड़ा दुख था बन गए। अपने जनों के सामने दुख दुगुन होकर जागता, मानी नहीं अपमान सहता, विश्व हो जागता। तो अपने जनों मेरे सामने दुख ज्यादा होता, विश्व रोने लगे। फिर माँ को जाकर के मारा आपकी जमाई है ये, तो पिता से कहा तो आओगी ये है ये तुम्हें बाहु के नाम का नौकर है, मेरे को लेकर आया है, अब वहां पहुंचना है, तो पैसे कैसे जाऊं? तो घोड़ों की विद्या सिखा दी उनको, उनको घोड़ों में ले जाओ, घोड़े ले जाएंगे आपको। और वो गणित विद्या थी ऋतुपर्ण नल को सिखा दी, ऐसे कर हुआ। तो ये बात आ गई कि बहेड़ा के वृक्ष के नीचे ये जितने कर्जु के अवगुण वो रहते हैं, तो मनुष्य के भीतर जो अहंकार है, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, विद्वान हूँ, त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, धनी हूँ, मान्य हूँ, राजा हूँ, महाराजा हूँ, ऐसा जो अभिमान है, उस अभिमान की छाया में संपूर्ण आसुर संपत्ति रहती है। तो संसति मूल शूल प्रदाना सकल शोक दायक अभिमाना, ये अभिमान है उस विषय रहती है। तो मैंने ये बताया कि दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो आसुरी संपत्ति स्वीकार कैसे हो? तो अभिमान ना करे। आपको कोई पद मिले और विद्या मिले, त्याग बैराग भजन आदि में तो अभिमान उसका नहीं करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पजपीड़ना खरस्य साधु विपरीत में त्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या मिलती है और दुष्ट को मिलती है तो विवाद करने के लिए, दूसरों को परास्त करने के लिए, दूसरों का अपमान करने के लिए विद्या होती है दुष्टों के पास में। सज्जन के पास में तो ज्ञान, अपने को ज्ञान हो औरों को भी ज्ञान हो, उस ज्ञान के लिए वो विद्या होती है। धन होता है दुष्टों के पास में तो घमंड करने के लिए, और बाजार में एक था जिसमें सब बाजार को बिल्कुल महंगी कर दी, सब चीजों खरीद दी, एक हाथ माल कर ली। ऐसे गीता रा चेता रा चुल्ला घर भंडार एक लट्टो बाड़ी और चारों नरक द्वार, ये सीधे नरकों में जाते हैं। एक लट्टो बाड़िया ने अपना हाथ में बाजार कर लिया, अब मर्जी आज से बेचे तो ये तो गीता ही है। गीतन होता है ना गीत गावन में राम भजन, वो खावण में खाती घड़ी ले राम भजन ले माठी, जब है आ रहा गीत गावन में जाए जगत में नाठी। तो ऐसी होती गीता ये तो एक चेता रहा चित्र करते, वो एक चुल्ला बनाने वाली और एक 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 अलसा बाड़ी चाबी नरकों में जाते सीधे। एक अलसा वो बाहर धन हो जाए तो बस अपने हाथ में सब कब्जा कर लिया, बाजार को करना सस्ता करना महंगा करना अपने हाथ में, सस्ता करके तो माल अपने खरीद लिया, महंगा करके बेचने लगे तो सीधा नरकों का दर जाए। ये दुख ऐसे करता है, धन होता है तो ऐसे दुख देने के लिए दुष्टों के पास में, और अच्छे सज्जनों के पास में है तो दान करे, गरीबों की सहायता करे, अपने खाने पीने के सिवाय अपने निर्वाह के सिवाय जितना है उस धन को अपना नहीं मानता। ये भागवत में महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के संबंध में आता है। युधिष्ठिर ने पूछा है वह ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और स्त्रियां, ऐसे नौ धर्मों का खूब वर्णन किया है, फिर सन्यासी का वर्णन किया कि बहुत बड़ी महिमा है। तो वहां पूछा कि महाराज गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी सन्यासियों में पद प्राप्त कर सकता है क्या, तो व्यवहार कर सकता है। यावत भेद धर्म, जैसे अपना निर्वाह हो इतना धन तो अपना माने, अधिक को अपना दम है, अपना है ही नहीं, किसका है पता नहीं, जहाँ आ सके उनको दे दे, उतना उनके निर्वाह दे दे, उनके निर्वाह दे दे, तो सन्यासी पद की पहले प्राप्त होता है। ऐसे धन कर तो शक्ति पर ऐसा शक्ति आ जाए कोई तो दूसरों को दुख देने के लिए होती है और सज्जनों के पास रखने के लिए। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। तो बड़ा वृक्ष ऐसा हुई ऐसा इतना महाराज रहते थे वहां रहे थे खूब, कल तो निकल गया, फिर जन संपत्ति बहुत दिन ससुर में, और तुम जाओ फिर उस दुआ खेला फिर जीत गए, फिर पुष्कर को हरा करके पीछे आधा राज दिया नाने, परंतु मेरे अन्न भी मिल दिया मैंने राज देखा तो छोटा भाई है, ऐसे नल की बात है। तो कर को तो कष्ट नागरश्य दमयन त्या नलश्य ऋतु पर आगर शेर कीर्तनम कलिनाशनम, ऐसी कथा है। तो ये कलयुग का पाप है, उनसे साधन से विरुद्ध असाधन होते हैं, और भगवान की तरफ चलने वाले देवी संपत्ति के वो साधन होता है। तो असाधन मिटना है मिटाना है, साधन सत्य होगा, फिर साधन साधन भीतर से पैदा होते हैं, वो फिर साधन बढ़कर के कल्याण कर देते हैं। साधन ऊपर से भरने से वो साधन जीवन नहीं होता, उसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं परंतु